ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुग्म व्यामोहतस्त्वितरानि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। बहुत ही विशेष दिवस है आज, श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है। श्रीपाद रामानुजाचार्य चार प्रामाणिक संप्रदायों में जो श्री संप्रदाय है उसके उद्धारक आचार्य अथवा प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। हालांकि श्री वैष्णव संप्रदाय किससे प्रारंभ होती है? स्वयं लक्ष्मी जी से, श्री और श्रीपद रामानाचार्य के पूर्व ही बहुत सारे आचार्य प्रकट हो चुके हैं, जिनको जैसे द्वापर युग से ही कई आचार्य प्रकट हुए हैं श्री संप्रदाय में, जिनको आळ्वार के नाम से जाना जाता है। कई विख्यात प्रमुख 12 आळ्वार हैं। आळ्वार अर्थात जो गहराई में गोते लगाते हैं, डीप डाइव डीप। तो इन भक्तों ने परम भगवान के माधुर्य प्रेम माई भक्ति का भी प्रदर्शन किया है, और श्रील प्रभुपाद ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये जो प्रमुख भक्त थे आळ्वार, जो कि परम भगवान के अलग अलग जो साज सज्जे हैं, कोई गदा है, कोई चक्र है, कोई शंख है, कोई घंटा है, इन सब, और कोई भूदेवी है स्वयं भगवान की शक्ति, वो भी एक आळ्वार के रूप में आई थी आंडाल नाम के, जिन्होंने स्वयं श्रीमन नारायण से विवाह किया था और वैकुंठ पधार गए। तो श्रील प्रभुपाद ने संपुष्ट किया है कि ये माधुर्य प्रेम के धरातल पे ही थे। और ये जो श्लोक हमने जिसका उद्धरण किया, ये श्रीपद रामानाचार्य का एक प्रमुख प्रणाम मंत्र है, जिसमें बताया जाता है कि मैं उन श्रीपद रामानाचार्य के चरण कमलों का शरण लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने परम भगवान का सदैव चरण ग्रहण किया है, और जिसकी वजह से हमें ये भौतिक जगत के व्यामोह अथवा लौल्य अथवा लालच या माया मोह किन चीजों से? उन चीजों से जो कि अच्युत पदाम्बुज युग्म रुग्म। अच्युत पदाम्बुज परम भगवान अच्युत के पद अम्बुज चरण कमल, और युग्म अर्थात दो चरण कमल, दो चरण कमल, रुग्म जो कि सुवर्ण स्वर्णिम चरण कमल का चरण, मैं उन रामानाचार्य का ग्रहण करता हूं जिन्होंने अच्युत का चरण ग्रहण किया है, और दया के सिंधु हैं जो, और बाकी जितने भी चीजें हैं स्वयं अच्युत के चरण कमल के अलावा, उन सबको तृण की तरह उन्होंने त्याग दिया है श्रीपद रामानुजाचार्य ने, इसलिए मैं उनका शरण ग्रहण करता हूं। और आज क्योंकि आविर्भाव दिवस है, कायदे से तो एक सिद्धांत ये बताता है कि अधिक से अधिक लीलाओं का वर्णन होना चाहिए आचार्यों का, और ये बताया जाता है कि तिरुभाव के तिथि के अवसर पर उनके शिक्षाओं का अधिक से अधिक वर्णन होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा मिक्सचर करेंगे। पहले तो हम ये स्थापित करेंगे कि इतने सारे त्योहार वैसे भी हैं इस्कॉन में गौड़ी संप्रदाय में, तो दूसरे संप्रदाय के आचार्य के आविर्भाव का भी हम मना रहे हैं, तो इसको थोड़ा संपुष्ट करने के लिए गौड़ीय सिद्धांत में श्रीपाद रामानाचार्य के साथ हमारा किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है इसको थोड़ा स्थापित करते हैं। सबसे पहली बात तो नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये स्पष्ट करते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जिनका आविर्भाव 1017 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि वर्तमान युग में श्री परमबुदूर नामक जगह है जो कि राजनीति से परिचित है, सब जानते हैं कि राजीव गांधी का असैसिनेशन वहीं पे हुआ था, तो उस प्रकार से लोग उसको स्मरण करते हैं, लेकिन असली में श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव स्थान है। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे विशेष स्मारक है, चिन्ह हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि नवदीप धाम में जाकर भगवान की भक्ति कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उनके सामने स्वर्णिम रूप में, सुंदर अजान लंबित भुज के साथ, भुजाओ कनकावधातो संकीर्त एक पितरो कमलाय ताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये सुंदर रूप भगवान का देखते हुए, हालांकि ये तो दोनों के बारे में है, गौर निताय के बारे में, लेकिन महाप्रभु स्वयं जब प्रकट हुए थे उसको देखकर पूरी तरह विफलित हो गए श्रीपाद रामानुजाचार्य। इतना सुंदर रूप किसका है, हालांकि उनको पता भी था, लेकिन उनके अंदर जो भाव उमड़ रहा था इस प्रकार था, और उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया कि आप वर्तमान युग में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार करेंगे। तो रामानुजाचार्य को तो दुख हो रहा था, जबकि सब कुछ जानते हैं कि सभी सिद्धांतों का निचोड़ तो यह है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया है, और उनके बारे में भी मैं बता नहीं पाऊंगा ये कैसे, तो ये अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मान रहे थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका विशेष ये वरदान दिया कि आगे 300 साल बाद जब मैं प्रकट होऊंगा, 300 से व्यतीत 400 साल बाद प्रकट हुए, 1686 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, 1486 मैं माइंड वॉज 14 बट लैंग्वेज इज 1486 ईस्वी में प्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और लगभग इसका मतलब है 469 साल बाद प्रकट हुए थे, लेकिन तब श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रकट होने के 469 साल बाद। लेकिन उन्होंने ये वरदान दिया कि श्री अनंत नामक एक ब्राह्मण के रूप में आप प्रकट होंगे और लक्ष्मी नारायण की उपासना करेंगे, और गौरांग महाप्रभु के रूप में मेरी जो लीलाएं घटेंगी उसमें आप एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार बताया जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया से जब विवाह किया था, तो उस समय ये वर्णन आता है कि श्री अनंत अपने कक्ष में प्रवेश करके जब लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे थे, तो स्वयं उन्होंने देखा कि वो श्री गौरांग महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया स्वयं हैं, उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिया और पूरी तरह अष्ट सातु विकार जागृत हो गए श्री अनंत के। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि स्वयं लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, उनको पूरी तरह गौरांग महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त हुई, और साथ साथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु के शक्त्यावेश अवतार हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, और ये स्वाभाविक है क्योंकि वही अनंत शेष जो कि सत्ययुग में थे, आगे जाकर त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, द्वापर युग में स्वयं श्री बलराम के रूप में, और वही कलयुग में श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए ये स्वाभाविक है कि नित्यानंद प्रभु का आवेश है उनमें। अनंत प्रथमं रूपं त्रेताय लक्ष्मणस्तदा द्वापरे बलभद्रश्च कलौ कश्चित् भविष्यति, ये वर्णन आता है। तो कलयुग में श्रीपाद रामानुजाचार्य वही लक्ष्मण है, वही नित्यानंद प्रभु हैं, वही बलराम जी हैं जो कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, और मैं कुछ विशेष चीजें बताना चाहूंगा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य को संख्याओं के रूप से बताना चाहूंगा, जो कि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ है। श्रीपद रामानुजाचार्य, जैसे हमने बताया कि श्री परम पुदूर में उनका आविर्भाव हुआ था। उनके पिताजी बहुत ही विशेष वेद के पंडित थे, असुरी सोमया जुलु उनका नाम था, और उन्होंने 16 साल की उम्र में ही सभी वेदों का अध्ययन कर लिया था, एक प्रकार से कंठस्थ कर लिया था। और ये बताया जाता है कि यादव प्रकाश नामक एक मायावादी गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया था। आगे जाकर यही यादव प्रकाश ने बाद में श्रीपाद रामानुजाचार्य से दीक्षा ग्रहण करी, और हालांकि पहले मायावादी थे, बाद में गोविंद जीयर नामक नाम से विख्यात हुए, और उन्होंने ही वैष्णव सन्यासी के लिए जो धर्म है वो क्या होना चाहिए इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, यति धर्म समुच्चयम नाम से। आज भी इस्कॉन के कई वर्तमान आचार्य इस ग्रंथ के खोज में हैं, इसको किस प्रकार से ठीक से समझाया जाए जिससे कि सन्यासी के लिए जो सिद्धांत है, दर्शन है, वो ठीक से समझ सकें। तो श्रीपद रामानुजाचार्य की अनुकंपा इससे हमें समझ में आती है कि वो व्यक्ति जो पूरी तरह मायावादी है, जिन्होंने उनको मारने की भी कोशिश करी थी, ये बताया जाता है कि उनके शिष्यों को साथ लेकर, क्योंकि इतने विख्यात हो गए थे श्रीपद रामानुजाचार्य अपने भक्ति और पांडित्य से, कि ईर्ष्या जाग उठी। जैसे ईर्ष्या जगाने की जरूरत नहीं, प्रत्येक जीव में ईर्ष्या है पहले से, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो कृष्ण संबंधित सभी वस्तुओं से ईर्ष्या करते हैं, उनके शुद्ध भक्तों से भी, आचार्यों से भी। तो बताया जाता है कि उनके मित्र गोविंद, उन्होंने इस षड्यंत्र के बारे में समझ लिया, जानकारी प्राप्त हो गया, और उन्होंने बताया श्रीपाद रामानुजाचार्य को कि आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आप बच जाएं। रातों रात वहां से निकल गए, हालांकि बाकी सब तो बनारस की तरफ जा रहे थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य वहां से निकल गए। और बताया जाता है कि रस्ते में एक पक्षी पकड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मदारी, क्या बोलते हैं, मदारी तो बंदर के लिए, पक्षी के लिए क्या है, शिकारी, बस बहेलिया, बहेलिया। तो बहेलिया और बहेलिया, बहेलिया की पत्नी, दोनों रस्ते में मिले थे, बहुत थके हुए थे, और उनकी पत्नी को जल की आवश्यकता थी, बहुत प्यासी थी। तो जंगल के बीच में कुछ लोग बोलते हैं छोटा सा तालाब था, कुछ लोग बोलते हैं कुछ छोटा सा कुआं था, उसमें से उन्होंने कुछ जल निकाल के उनके दिए, कुछ श्रोते बताते हैं कि 3 बार दिए उनको जल पिलाए, और रात को थोड़ा आराम किया जंगल में, बनारस के करीब है जाने के रास्ते में, और सुबह उठे तो घंटी बज रही थी, कहां की, उसी कांचीपुरम के वरदराज स्वामी की, जहां से रामानुजाचार्य निकल पड़े थे, और जो लोग उनके साथ मिले थे, जय श्री राधा राधे रमन कृष्ण बलराम की, जय श्री जगन्नाथ बल सुब्रमा की जय, गौर निताय की जय, वो और कोई नहीं थे, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण थे। और किस वजह से उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें बाद में पता चलता है कि कांचीपूर्ण नामक विख्यात वैष्णव थे जिनको प्रत्यक्ष संग प्राप्त था स्वयं भगवान के, वरदराज के, वरद राजा अर्थात जो वरद वर देते हैं, वर देने वालों में से जो प्रमुख हैं, जिनके राजा हैं, वर देने वालों के राजा हैं वरद राजा। कांचीपुरम जहां पे आगे रहते थे श्रीपद रामानुजाचार्य, पहले श्री परमपुदूर में थे, फिर कांचीपुरम गए, वहां पे रहते थे, और वहां पे वापस आ गए। बताया जाता है कि कांचीपूर्ण जिनके प्रथम शिक्षा गुरु थे, उनसे पहले अपने मायावादी गुरु से थोड़ा त्रस्त होकर, हालांकि वैष्णव थे इसलिए सहन कर रहे थे, उन्होंने का शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने बताया मैं तो वैश्य परिवार से हूँ, आप तो ब्राह्मण कुल से हो, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। फिर भी उन्होंने बताया कि मुझे आप शिक्षा से वंचित ना करें। तो कांचीपुर ने उन्हें बताया कि आप जलक कैंकर्यम करिए, जलक कैंकर्यम अर्थात भगवान और माँ लक्ष्मी के लिए जल कुएं से लेकर वहां जाकर उनको देना। और ऐसा नहीं कि टैप खोल के मिल जाता था या होस से हो जाता था, बहुत लंबा चलना पड़ता था। और श्री वैष्णव मंदिर आप देख सकते हैं बहुत बड़े हैं, बहुत प्रहार वगैरह बहुत बड़े होते हैं, ऊपर से नीचे तक जाते थे, फिर उससे जल घड़े में भरकर फिर वापस ले जाते थे भरद्वाज के लिए और माँ के लिए, लक्ष्मी के लिए। और आचार्य बताते हैं क्योंकि उन्होंने ये सेवा करी थी इसलिए स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए थे उनके सामने और उनको बचाया इस बहुत बड़े आपातकालीन परिस्थिति से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि श्रीपद रामानुजाचार्य को संख्या के रूप से 1 से 9 तक कुछ संख्याओं के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। इन संख्याओं का क्या महात्म्य है? एक, एक जो है सभी संख्याओं में से प्रमुख है और श्री वैष्णव संप्रदाय में श्रीपद रामानुजाचार्य एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिनको स्वामी नाम का पद दिया गया है। स्वामी बोलते हैं आप बिना किसी अन्य नाम के तो समझ सकते हैं कि वो श्रीपद रामानुजाचार्य हैं। और ये स्वामी और हमारे भी प्रभुपाद जी का संन्यास नाम जो है स्वामी महाराज था, थैंक यू। और ये बताया जाता है कि श्रीपद रामानुजाचार्य एकमात्र वो आचार्य हैं जिनका विग्रह भविष्यत आचार्य नाम से पहले ही पूजित था, उनके प्रकट के प्रकट के पहले ही। तैसे एक आचार्य यहां तक बताया जाता है कि पूर्ववर्ती आचार्य में भी कई उनकी उपासना करते थे। तो यह है उनका महात्म्य श्रीपद रामानुजाचार्य का। आप कोई भी श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करता है, एक होता है उपकारक आचार्य जो कि सहाय करते हैं या मदद करते हैं, और एक होते हैं उद्धारक आचार्य। और सबके लिए उद्धारक आचार्य है श्रीपद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में, भले ही वो अन्य गुरु से दीक्षित हैं। तो हमारे लिए भी ये समझ सकते हैं जैसे कि हमारे अपने दीक्षा गुरु जरूर हैं लेकिन साथ साथ हमारे दीक्षा गुरु शिल प्रोपात की ओर से हमें दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारे लिए उद्धारक आचार्य शिल प्रोपात है और उपकारक आचार्य अपने हमारे दीक्षा गुरु। इस प्रकार का एक मत इस्कॉन के कई वर्तमान आचार्य प्रस्तुत करते हैं। मैंने श्री लोकनाथ स्वामी महाराज से सुना था, उनके ग्रंथ में भी इसका थोड़ा वर्णन है। अब दूसरा, दो जो है उनके शिष्यों में से दो प्रमुख शिष्य थे, एक है दाशरथी और दूसरा है कुरेश, जो कि दो प्रमुख शिष्य थे। और श्री वैष्णव शास्त्रीय पंडित ये बताते हैं कि एक उनमें से उनका दंड था, दाशरथी जो हैं उनके दंड थे और कुरेश उनके पवित्र थे। तो सन्यासी के लिए दो प्रमुख के साथ में उनके साथ सज्जा हैं, एक दंड और एक पवित्र, तो इनके दो प्रमुख शिष्य थे कुरेश जिन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य जो है बोधायन वृत्ति के अनुसार पूरी तरह कंटेस्ट कर लिया था एक दो रातों में। और पूरा भाष्य श्री वैष्णव भाष्य बोधायन वृत्ति के अनुसार उन्होंने लिखा। और दाशरथी इनके प्रथम शिष्य थे श्रीपद रामानुजाचार्य के, उनके कजिन भी थे। और जैसे रामानुजा मतलब कौन है, रामानुजा कौन है, प्रथम रामानुजा तो लक्ष्मण है, इसी प्रकार दाशरथी बोलते तो कौन है, दशरथ के पुत्र स्वयं श्री रामचंद्र। तो बताया जाता है कि स्वयं रामचंद्र जी के विस्तार थे, अंश विस्तार थे दाशरथी, क्योंकि पिछले जन्मों में लक्ष्मण ने, हालांकि बलराम जी का तो अलग हम कथा सुनते हैं, लेकिन स्वयं श्री रामचंद्र सेवा करना चाहते थे लक्ष्मण के। इस प्रकार श्री वैष्णव शास्त्र बताते हैं कि इसलिए वो अपने अंश विस्तार के रूप में आए थे, दाशरथी के रूप में। और दूसरे कुरेश जो हैं वो भी आड़वार, आड़वार नाम से उनको भी बोला जाता है, कुरत आड़वार कुरेश। वो भी बताया जाता है कि वो भरत जी के विस्तार थे, तो सब पूरा फैमिली आ गया था, श्रीमद रामानंदाचार्य और उनके दो प्रमुख शिष्य, तो ये हुए दो। और तीन, श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमुख गुरु जो होने वाले थे वो हैं श्रीपाद यमुनाचार्य आलवंदार, जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, जिनके श्लोक भी कोट करते हैं स्तोत्र रत्न से। और उनका एक प्रमुख श्लोक है जो कि बताया जाता है विशेष करके ब्रह्मचारी के लिए, बहुत विख्यात श्लोक है। कौन सा श्लोक है? यदवधि मम चेता कृष्ण पादारविंदो नव नवरसदा मान्युद्यते मन्तुमासीत् तदवत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवतु मुखविकारं सृष्टिनिष्टीवनं च। जब मेरा मन क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों में सदैव रमता है और नए नए रस का आस्वादन करता है, अब उसको नारी संग के बारे में सुनने मात्र से या स्मरण करने मात्र से इस प्रकार उसमें इस प्रकार का विकार आता है, जैसे कि मुंह इस प्रकार हो जाता है और मुड़ जाता है और थूकने को मन करता है। सृष्टि निष्ठीवनम च, तो ये स्वयं राजा थे आलवंदर, फिर भी सभी अपने राज आरभाड़ को त्याग कर प्रमुख सन्यासी बने। और वो चाहते थे स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य को दीक्षा दिलाएं, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच जाएं वो गुजर गए। लेकिन जाते समय उनके उन्होंने देखा श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कि अपने गुरु के तीन उंगलियां इस प्रकार मुड़ी हुई थी, यह है नंबर तीन। तो वहां उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवों ने बताया और रामानुजाचार्य ने भी समझ लिया कि उनके तीन प्रमुख आदेश थे इनके लिए। और वो आदेश इस प्रकार थे, एक तो ये कि कम से कम दो प्रमुख वैष्णवों को इस प्रकार दीक्षा दिलाकर उनको शिक्षा भी दिलाएं और प्रमुख वैष्णव बनाए जो आगे जाकर संप्रदाय को चलाएं, जो कि एक स्वयं श्रील व्यासदेव के नाम से और एक पराशर मुनि के नाम से विख्यात हों, उन नामों को और विख्यात करें। तो आगे जाकर बताया जाता है कि जो प्रमुख आचार्य हुए थे श्रीपद रामानुचार्य के बाद, उनका नाम है पराशर भट्ट। उनके बारे में भी कई विख्यात घटनाएं होती हैं, कभी फिर कभी समय तो चर्चा करेंगे। तो व्यास भट्ट और पराशर भट्ट, इन दोनों के नाम से दो प्रमुख वैष्णवों को प्रशिक्षण भी दिया और उनको नाम इस प्रकार दिलाकर, ये पराशर भट्ट कुरेश के पुत्र थे। आगे जाकर अगले आचार्य वही बने प्रमुख आचार्य श्री वैष्णव के। तो पहला आदेश अपने गुरु का उन्होंने इस प्रकार पूरा किया। और दूसरा आदेश था कि नम आलवार, जो कि आप देख सकते हैं कि जो शटारी यहां पर रखी जाती है, सर पे जो विशेष आशीर्वाद दिया जाता है, इसको शटगोपा बोलते हैं, शटगोपा शटारी। तो ये जो है नमालवार हैं, जो कि प्रमुख आचार्य थे पहले, और उनकी सन्निधि में आप उनके ऑल्टर में जाएंगे किसी भी श्री वैष्णव मंदिर में, वहां पर श्रीपाद रामानुजाचार्य के पादुकाएं मिलेंगे। और श्रीपाद रामानुजाचार्य के सन्निधि में जाएंगे तो वहां पर दाशरथी की पादुकाएं मिलेंगे, क्योंकि वही आचार्य हैं जो कि जिनके मार्ग से हम दाशरथी के मार्ग से श्रीपाद रामानुजाचार्य तक पहुंच सकते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य के मार्ग से स्वयं नमालवार के चरण कमल तक पहुंचे। और नमालवार के चरण कमल जो हमारे सर में रखा जाता है शटगोपा, इससे स्वयं श्री भगवान के चरण कमल तक हम पहुंच सकते हैं। षटकोपम प्रपद्ये सर्वेशम वस्तुतोपरि सर्व पाप क्षयम प्रोक्तम षट आरी शिरण एक शपात, ये मंत्र बोलकर हमारे पुजारी सर पे रखते हैं, लेकिन ये गौड़ी वैष्णव की विधि नहीं है, ये श्री वैष्णव विधि है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हालांकि मध्व संप्रदाय से श्री विग्रह सेवा की विधि अपनाई और केवल अद्वैत निरसन अपनाया, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से उन्होंने दो प्रमुख विधियां अपनाई थी। एक है अनन्य भक्ति, जो कि कर्म और ज्ञान से विहीन है, ज्ञान कर्मा ध्यानामृतम, और दूसरा है भक्तजन सेवा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस कांड में बहुत सारे जो अर्च्य विग्रह की सेवा उपासना होती है वो श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार चलता है। अभिषेक भी देखेंगे और यहाँ पर कई सारी विधियां जो है श्री वैष्णव संप्रदाय से लिए जाते हैं। तो श्रीपद रामानाचार्य का विशेष श्रेय जाता है इसके लिए कि ये सारी पद्धतियां उन्होंने सुचारू रूप से अनियोजित किया। जो भी हो, नम्मालवार ने एक ग्रंथ लिखा था दिव्य प्रबंधम, और इसका श्रीपद रामानुजाचार्य ने टीका लिखा और इसको श्री वैष्णव सिद्धांत जो है पूरी तरह प्रचार करने में इस ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। अब कोई भी श्री वैष्णव मंदिर में जाएंगे, यहाँ पर भी आरके पुरम में है और कुतुब एनक्लेव के पास है, सब जगह आप जाएंगे, जो भी श्री वैष्णव मंदिर है वहां पर रंगनाथ जी का मंदिर है, वहां जाएंगे तो इस दिव्य प्रबंधम का पाठ होता है और रोज होता है नियमित रूप से। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सुचारू रूप से सुबह भागवतम क्लास, शाम को भागवतम क्लास रखा है, इसी प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 1137 ईस्वी में जो प्रथा प्रारंभ करी थी, अभी भी सारे श्री वैष्णव मंदिरों में ये चल रही है प्रथा, दिव्य प्रबंधम का पाठ। देखिए, न सिर्फ वो एक आचार्य थे बट वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, पूरी तरह उन्होंने प्लान किया है किस प्रकार से टेम्पल प्रोग्राम होने चाहिए। और तीसरा था बोधायन वृत्ति के अनुसार विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर वेदांत सूत्र का भाष्य। बताया जाता है कि कश्मीर में गए इसको प्राप्त करने के लिए श्रीपद रामानाचार्य अपने शिष्यों के साथ, और वहां पर इसमें अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा इस प्रकार है कि मायावादियों ने उन्हें ग्रंथ नहीं दिया, फिर भी किसी न किसी प्रकार से स्वयं माता सरस्वती ने उन्हें ग्रंथ प्रदान किया और रातों रात निकल पड़े थे, फिर भी एक हफ्ते के अंदर कुछ मायावादियों ने पकड़ लिया और उनसे ग्रंथ वापस ले लिया। तो श्रीपाद रामानाचार्य चिंतित थे, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कैसे कर पाऊंगा। तब उनके शिष्य कुरेश ने बताया कि गुरुदेव आप चिंतित ना हो, मैंने पूरा बोधायन वृत्ति के अनुसार सब कुछ कंठस्थ कर लिया रातों रात। तो हमें से किसी को भी अगर छोटा सा भी घमंड है कि भगवत गीता के 100-150-200 श्लोक हमें कंठस्थ है या 700 भी श्लोक कंठस्थ हैं, भूल जाएं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। असली फायदा यह है जो अगर आप में स्मरण शक्ति है, हमें स्मरण शक्ति है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि पूरे वेदांत सूत्र के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार टीका को उन्होंने कंटेस्ट कर लिया और लिखना शुरू कर दिया श्रीपद रामानुजाचार्य के अनुसार। तो इस प्रकार श्रीपद रामानुजाचार्य के गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए या उसको साकार करने में उनके शिष्य का योगदान था। तो हमारे लिए भी ये शिक्षाप्रद बात है कि हम जब अपने गुरु की सेवा करते हैं, इसका मुख्य कार्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है, ध्येय ये है कि हम किस प्रकार उनके कार्य में सहयोग दें, जिसे को श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को और आगे ले चले। हमारे लिए एक प्रकार से एक चेकलिस्ट है, मैं जो कार्य कर रहा हूं इससे क्या मैं अपने गुरु के आंदोलन में, अभियान में कुछ भी मदद कर रहा हूं जिसे को श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को और आगे ले जा सके। एक प्रकार से मनन है हमारे लिए। और उन्होंने ये तीनों आदेशों का, अपने गुरुदेव का, उनका पालन कर दिया श्रीपद रामानुजाचार्य ने। और संख्या चार क्या है? चार युगों की बात हमने बताई थी, जो सत्ययुग में शेषनाग थे, आदिशेष थे, और त्रेता युग में स्वयं लक्ष्मण के रूप में आए थे, द्वापर युग में स्वयं बलराम जी के रूप में, और कलयुग में श्री बलरामाचार्य के रूप में, हालांकि हम जानते हैं कि श्री अनंत के रूप में भी आए थे। पांच विशेष करके श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम शिक्षा ग्रहण करें। कॉर्पोरेट जगत में भी बताते हैं कंटिन्यूस लर्निंग, तो श्रीपद रामानुजाचार्य इसके बहुत उज्जवल प्रतीक थे, उदाहरण थे। उन्होंने पांच शिक्षा गुरु ग्रहण किए, उनमें से एक दीक्षा गुरु भी बने आगे। पहले थे महापूर्ण, तमिल में पेरिय नंबी बोलते हैं, संस्कृत में महापूर्ण, और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने इन सबका नाम दिया है संस्कृत में और तमिल में। कितना रिसर्च किया श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने, उन्होंने बताया कि इनसे महापूर्ण से श्रीपद रामानुजाचार्य ने पंच संस्कार सीखे और रहस्यार्थ सीखे मंत्रों के, और गीता भगवत गीता का अध्ययन, विशेष अध्ययन किया महापूर्ण से। दूसरा मालाधरा, जो कि बताया जाता है कि छोटे भाई थे यमुनाचार्य के, उनसे रामायण के विशेष अर्थ ग्रहण किए श्रीपद रामानुजाचार्य ने, रामायण का विशेष अर्थ। और गोष्ठी पूर्ण इनके गुरु थे, जिनसे चरम श्लोक का अर्थ ग्रहण किया था श्रीपद रामानुजाचार्य ने। चरम श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री वैष्णव के तीन प्रमुख मंत्र दिए जाते हैं न्यास के समय पर। पहला है ओम नमो नारायणाय, और फिर इसको प्रथमम बोलते हैं, फिर द्वयम। द्वयम क्या है? श्रीमन नारायण चरणो शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय, और फिर चरमम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस 1866 इस श्लोक का अर्थ, चरम श्लोक का अर्थ गोष्ठीपुर ने बताया। हम सब जानते हैं कि ये जो अर्थ बताने के बाद गोष्ठीपुर ने क्या बताया था उनको, उनको बताया था कि इसका अर्थ आप किसी को भी बताएंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो श्रीपद रामानुजाचार्य ने क्या किया? वही किया। बताया जाता है कि गोष्ठी तिरुगोष्ठीयूर नामक एक स्थान है, इसलिए गोष्ठीपूर्ण नाम पड़ा उन्होंने उस गोष्ठी ओर। गोष्ठी मतलब क्या? गोष्ठी रूप मंडली, झुंड या सभा। तो ये गोष्ठी इसलिए बनी थी कि एक थे हिरण्यकशिपु, उनसे जब त्रस्त हो गए थे देवता लोग, तब उन लोगों ने सब मिलकर यहां पर गोष्ठी करी थी, इसलिए उस स्थान का नाम तिरुगोष्ठीयूर बना। और वहां के मंदिर में, मंदिर के छत पर पहुंचकर श्रीपद रामानुजाचार्य ने जोर से इस मंदिर का अर्थ समझाया सबको, सर्वधर्मान परित्यज्य का ना वो तो दो, लेकिन चरम गोष्ठीपुर ने तो उन्होंने चरम ही दिया था। बताया जाता है ओम नमो नारायण आया, लेकिन गोष्ठीपुर से उन्हें जो मंत्र का अर्थ प्राप्त हुआ वो है शर्मम का। मंत्र का रहस्य अर्थ यही है, बाकी ओम नमो नारायण है। वैसे बाकी जो फिल्म्स हैं उसमें ओम नमो नारायण बताते हैं, और हाँ बुक्स में भी है, लेकिन गोष्ठीपूर्ण ने इनको जो समझाया था वो ओम नमो नारायण का अर्थ नहीं था, उनको बताया था सर्व त्रयम का, ये जो चरमम श्लोक है उसका अर्थ बताया था। वैसे दो मत है इसमें कि बताया जाता है उनके प्रमुख शिष्य हैं उनको बुलाकर उन्होंने बता समझाया, इस प्रकार कुछ आचार्य बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं जितने भी वहां के निवासी थे उस शहर के सबको बुलाया, जो भी हो एक को भी दोबारा बताना बिना अनुमति के नरक ले जा सकता था उन्हें, लेकिन श्रीपद रामानुजाचार्य ने ये किया। हालांकि ओम नमो नारायण का अर्थ भी बताया जाता है कि उन्होंने समझाया खुले नहीं। नरा अर्थात मनुष्य, नारा अर्थात मनुष्यों का समूह, नारायणा अर्थात जो मनुष्यों के समूह के आधार हैं, और नमः का अर्थ ये भी सूचित करता है, नमः ये मेरा नहीं है, सब कुछ ये जो जगत है स्वयं श्रीमन नारायण का है। तो ये तीसरे गुरु थे। और फिर एक और मालाधर थे, मालाधर से उन्होंने भागवत विषय के बारे में समझा, भागवत विषय। और फिर वररंग थे, उनसे द्राविड़ गणम करके एक ग्रंथ है उसके बारे में सीखा। जो भी हो, पांच गुरु हैं, पांच प्रमुख गुरु हैं, उनसे पांच पांच चीजें उन्होंने सीखी थी। और महापूर्ण से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी थी। नंबर छह, उनके जीवन में छह प्रमुख संदेह थे जिनका निवारण स्वयं वरदराज ने दिया कांचीपूर्ण के मुखारविंद से, क्योंकि कांचीपूर्ण ऐसे थे जो कि स्वयं भगवान की सेवा करते थे, व्यजन सेवा करते थे, और स्वयं बात भी होती थी, बातचीत चलती थी। क्या हमारे जैसे बातचीत चलते, वैसे कांचीपूर्ण और वरदराज के बीच में बातचीत चलती थी। तो उन्होंने छह प्रमुख आदेश दिए इन संदेहों के निवारण के लिए। पहला, अहमेव परम तत्वम, अहम एव परम तत्व, मैं ही परम सत्य हूं, स्वयं भगवान बता रहे हैं। दूसरा, दर्शनम भेद एवच, श्री वैष्णव सिद्धांत जो है तत्व त्रयम पर आधारित है। तत्व त्रयम क्या है? चित, अचित और ईश्वर, मुख्य ये तीन चीजें हैं, चित है, अचित है और ईश्वर है। और विशिष्ट अद्वैत क्या है? श्रीपद शंकराचार्य ने बताया था अद्वैतम, सब एक है। श्रीपद रामानुजाचार्य ने बताया जिस प्रकार शरीर और आत्मा है उसी प्रकार श्रीमद नारायण भगवान और जड़ और चेतन जितने भी वस्तुएं हैं उनके बीच का संबंध है। श्रीमद नारायण स्वयं आत्मा है इस ब्रह्मांड के, और उसमें जितने भी जीव हैं और जिसमें जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सबके आत्मा स्वयं श्रीमद नारायण है। और शरीर क्या है? ये जड़ और चेतन वस्तु, और विशेषण और विशेष्य है। जो वस्तु जिसका विशेषण होता है वो प्रमुख है, और जिसके द्वारा विशेष्य, जो विशेष वस्तु है वो है श्रीमद नारायण, और जिसका विशेषण अथवा गुण है वो है जितने भी अन्य वस्तु। और ये विशेषण और विशेष्य के बीच में घनिष्ठ संबंध है और एक साथ है ये तत्व, इसलिए इसको विशिष्ट अद्वैत बताया जाता है। सब एक है लेकिन सबका आधार श्रीमद नारायण है। एक प्रकार से जीव की स्वेच्छा बिल्कुल नकार की जाती है विशिष्ट अद्वैत में पूरी तरह। इसलिए आगे जाकर मध्वाचार्य को और संपुष्ट करना पड़ा कि जीव और ईश्वर के बीच में भेद है दो। और क्योंकि श्रीपद रामानुजाचार्य का सिद्धांत यद्यपि प्रामाणिक है, फिर भी ईश्वर और जीव के बीच का भेद संपुष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय के साथ जोड़ा कि अन्यथा लोग भटकते थे। और शास्त्र बताता है कि यो हरेश्चैव जीवेना भेद वक्ता हरे प्रियः, जो भगवान और जीव के बीच में अंतर स्पष्ट समझाता है वो व्यक्ति हरि के लिए बहुत प्रिय है। और श्रीपद रामानुजाचार्य ने एक किया, जीव और ईश्वर के बीच का अंतर समझाया। और तीसरा है, एक हमने बताया अहम एव परम तत्वम, मैं परम सत्य हूं। दूसरा, दर्शन जो है चित अचित और ईश्वर के ऊपर आधारित है। और तीसरा है उपयेषु प्रपत्तिस्या, श्रद्धा और शरणागति से तुम मुक्ति तक पहुंच सकते हो मेरे पास, इस प्रकार भगवान बताते हैं मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। और चौथा है अंतिम स्मृति वर्जनम, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करना अनिवार्य नहीं है। क्यों? श्रील प्रभुपाद ने जैसे सेठी जी को बताया था, तुम यहां पर कमरे बना रहे हो इन भक्तों के लिए और वहां भगवान तुम्हारे लिए कक्ष बना रहे हैं गोलोक में। तो सेठी जी ने बताया, श्रील प्रभुपाद मैं तो इतना पापी हूं, मेरा कैसे भगवान ध्यान रखेंगे? श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया? वो तुम्हारे परवाह की बात नहीं, मेरे लिए वो मेरी बात है, मेरे लिए है बात, दिस नॉट ऑफ योर बिजनेस। एक तरीके से शिल पर उन्हें बताया कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से अंतिम स्मृति हो जाती है, अलग उसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं। हालांकि साधक को तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन श्रीपद रामानुजाचार्य को बताया भगवान ने स्वयं। और दूसरा है और पांचवा है, देहावसाने मुक्ति स्यात्। मुक्ति जो है शरीर छोड़ने पर ही होती है, हालांकि ये समझने वाली बात है, ये सामान्य जीव के लिए है। आचार्य तो जीवन मुक्तस्य उच्चते, जीवित रूप में भी मुक्त होते हैं। और पूर्णाचार्य समाश्रया, महापूर्ण के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करिए कृष्ण की कृपा से। हा? Fourth, there are six instructions. One is I am the supreme truth. Two is there are three parts of philosophy: chit, achit, and ishvara. Three is by faith and surrender you shall come to me. Upayeshu prapatyasyat. Fourth is antima smriti varjanam. Fifth is dehavasane muktisyat. देह के अवसान पे ही मुक्ति होती है। और सिक्स्थ इज पूर्णाचार्य समाश्रया। और सात संख्या का महत्व यह है कि सातों, सात टीला अथवा सात जो पहाड़ हैं उनके ईश्वर कौन है, उनमें कौन रहता है, सात पहाड़ों के ऊपर कौन रहता है भौतिक जगत में? श्री वेंकटेश्वर बालाजी को लॉर्ड ऑफ सेवन हिल्स बोलते हैं, सात पहाड़ है वहां पर। तो ये सात संख्या का बहुत विशेष योगदान है श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन में, क्योंकि श्रीपद रामानुजाचार्य ने शंख और चक्र दिलाया भगवान को। तब तक लोग सोचते थे कि ये शिवजी हैं, दुर्गा हैं, कार्तिकेय हैं। और ये भी विशेष है कि बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी जो श्रीनिवास, गोविंदा गोविंदा, प्रोपा ने बताया था कि वेंकटेश्वर बालाजी कृष्ण से अभिन्न है, गोविंद है। गोविंदा माधि पुरुषम तमहम जामी, प्रोपा ने प्रार्थना करी थी तिरुपति में। अभी भी हमारे राधा गोविंद अष्ट सखी मंदिर है वहां पर इस्कॉन का तिरुपति में। और फिर इसके अलावा विशेष शास्त्रों के अनुसार वेंकटेश्वर बालाजी के यहाँ आंगन एक विशेष पुष्प वाटिका बनाई थी। स्वयं श्रीपद रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य अनंत आडवान को भेजा और उनसे विशेष वाटिका बनाई। और आठ संख्या क्या है? अष्टाक्षरी ओम नमो नारायणाय। इस श्लोक का विशेष अर्थ दिया जिसमें एक है अनन्यार्ह शेषत्वम, अधीन होना और किसी के नहीं सिर्फ नारायण के, अनन्यार्ह शेषत्वम। दूसरा है अनन्य शरणत्वम, जीवात्मा के लिए श्रीमान नारायण के अलावा कोई शरण नहीं है। और तीसरा है अनन्य भोग्यत्वम, जीव की सेवा है भगवान का भोग्य वस्तु बनना। इसी को श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते थे, जीवा इज टू बी एंजॉयड, जीवा इज टू कोऑपरेट, ईश्वरा इज टू कंट्रोल, ईश्वरा इज द एंजॉयर, भोक्ता, कृष्णा इज भोक्ता, वी आर भोग्य वस्तु, टू बी एंजॉयड बाय कृष्ण। तो ये है अष्टाक्षरी अर्थ, तो हमने बता दिया ओम नमो नारायण का। और नौ संख्या विशेष ये है कि श्रीपद रामानुजाचार्य ने नौ प्रमुख ग्रंथ प्रस्तुत किए थे। एक है वेदार्थ संग्रह, फिर श्री भाष्य लिखा था और भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा था, नित्य ग्रंथ लिखा था जो कि हर रोज वैष्णव के लिए क्या क्या करना है, श्री वैष्णव के लिए पूरा उसमें वर्णित है। आगे जाकर जैसे षटक्रिया सार दीपिका जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा था गौड़ी वैष्णव के लिए, जिनके पिताजी स्वयं वेंकट भट्ट थे जो कि श्री चंद्र महाप्रभु के परिकर थे, श्रीरंगम में मिले थे। तो उन्होंने जो सक्रिय सार दीपिका वैष्णव के लिए, गौड़ी वैष्णव के लिए लिखा था, वो प्रमुख रूप से श्री वैष्णव ग्रंथों के ऊपर भी आधारित है, और बहुत सारे ग्रंथ इस प्रकार 9 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। और अनेक तुलगम वाळ पिरंद इतिराज मामुनिवा एळेक्किरंगैयने போல் பிழை செய்வார் இவ்வுலகில் உண்டோ உனை போல் பொறுக்க வல்லர் உண்டோ அனைத்துலகம் வாழ் பிறந்த இத்திராஜ மாமுனிவா இழைக்கு இறங்காள் எனே பத்தா ஜாத்தா ஹை கி மேரே சே அதிக் கோய் பாப் கர் சக்தா ஹை க்யா ஔர் மேரே சே ஜாதா பதித் கோய் ஹோ சக்தா ஹை க்யா ஔர் ஆப் சே அதிக் கிருபாலு கோய் ஹோ சக்தா ஹை க்யா हे इतिराज, हे श्रीपाद रामानुजाचार्य, आपका जन्म ही जीवों के भौतिक जगत से उद्धार के लिए था, कृपया इस विचार के ऊपर भी कृपा दिखाएं जिससे कि मेरा उद्धार हो। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक मोर बट इट्स 9। हरे कृष्ण। डू यू हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस? और किसी के प्रश्न है कुछ? यस, आई एग्री प्रभु। पंजाबी भाग में क्लास देना उतना डरावनी चीज नहीं है जितना क्वेश्चन आंसर फेस करना। सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं।
जी, दो तीन क्लैरिफिकेशन था। एक तो शर्त दिया सार देविका, किन्होंने लिखी हो?
गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रमुख। वैसे तो इसमें सनातन गोस्वामी का भी योगदान था, जीव गोस्वामी का भी थोड़ा योगदान था, प्रमुखता गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रस्तुत किया था, जो कि हमारे शक गोस्वामी से थे। उसमें कई सारे ऐसी विधियां हैं, संस्कार हैं, जो कि श्री वैष्णव विधियों से भी मिलती जुलती है, क्योंकि उस समय बहुत जरूरी था। आए तो स्वयं श्रीरंगम से ही थे, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक था। गौड़ी संप्रदाय में जितने भी संस्कार हैं, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक था, जो कि अन्य संप्रदाय में भी जिनका प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए कुछ मिलती जुलती जैसे ये भी देख सकते हैं। इस्कॉन के कई वर्तमान आचार्य हैं जो ये स्वीकार नहीं करते, इसलिए जयद्वैत महाराज स्वीकार नहीं करते शटारी, लेकिन जरूरी है, प्रचार के लिए करना पड़ता है, क्योंकि पुजारी जब शटारी किसी के सर पर रखते हैं तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, कुछ कनेक्शन होता है भगवान के साथ। ऑल्टर के ऑल्टर में प्रवेश तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टर में जो वस्तु उपस्थित है वो हमारे पर स्पर्श करता है तो कनेक्शन हो जाता है।
एक और ये दीक्षा गुरु, उनके गोष्ठीपूर्ण है कि
महापूर्ण? दीक्षा गोष्ठीपूर्ण के पास रहस्य मंत्रों के अर्थ जानने के लिए 18 बार गए थे, और आप हैरान हो जाएंगे किस किस कारण से उनको लौटाया गया। उनको बोले, एक बार बताया कि आपके संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ के आइए, फिर बोले कि श्री वैष्णव बनने के बाद आइए। इतने उत्पटन रीजंस थे, कोई भी और होता तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन किस प्रकार उनका दिल हृदय पिघला, यह भी बताया जाता है कि जब श्रीरंगम के किसी पुजारी ने उनके भोजन में विष मिलाया था, तो ये बात उनकी पत्नी ने उनको आंसू बहाकर समझाया श्रीपद रामानुचर को। स्पष्ट तो नहीं बोल पाई, लेकिन आंसू बहाया तो श्रीपद रामानुचर समझ गए। तो पता है श्रीपद रामानुचर ने क्या किया? उस व्यक्ति के हृदय से नकारात्मक भावना जाने के लिए उन्होंने उपवास रखा। श्रीपद रामानुजाचार्य जब उन्होंने उपवास रखा और ये बात गोष्ठीपूर्ण को पता चला, ये बात पता चला गोष्ठीपूर्ण को, ये बात जब उनकी समझ में आई, तब उन्होंने बताया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्रों का अर्थ दूंगा। तो इतनी अनुकंपा थी उनमें श्रीपद रामानुजाचार्य का, अपने शत्रु के प्रति भी। और यही भाव था जब यज्ञमूर्ति नामक एक मायावादी सन्यासी आया था, तो उनके साथ 17 दिन तर्क वितर्क चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था। 18वें दिन स्वयं रंगनाथ के सामने गए और रामानुजाचार्य ने प्रार्थना करी कि आप ही इस व्यक्ति के हृदय को बदल सकते हो। और जब वापस आए तो श्रीपद रामानुजाचार्य को देखकर उन्होंने स्वयं साष्टांग प्रणाम कर लिया कि आपको देखकर मुझे समझ में आ गया कि वो साक्षात परम ब्रह्म आपके ऊपर कृपालु है, आपके अंदर उसका तेज है। और फिर उन्हें देवराज मुनि नाम से उन्होंने दीक्षित किया यज्ञमूर्ति, वो भी मायावादी था। कहने का उद्देश्य यह है कि उनके अंदर ये जो विशेष भाव था प्रार्थना करने की दूसरों के हित के लिए, इसलिए वो उद्धारक आचार्य है। और इसी अनुकंपा को उन्होंने प्रदर्शित किया गोष्ठ पूर्ण के साथ जो घटना घटी थी उसमें भी। आपने एक तो देखा रंगनाथ की पुजारी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, फिर अपने गुरु के मना करने के बावजूद सबके हित के लिए भले उन्हें नरक जाना पड़े, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि आचार्य ही ये कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बताया था बक्सीदास महाराज को कलकत्ता मत जाओ, और गौड़ी मठ का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, तो उस सबको फिर बाद में समझाया उन्होंने कि गौड़ी की ये जो मंदिर जो है कलकत्ते में नहीं है, उनको पता है वो आचार्य हैं। श्रीपद रामानाचार्य ने स्वयं संन्यास दीक्षा ग्रहण करी थी, और श्रील भक्तिस्थान सरस्वती महाराज ने भी ऐसे ही कराया था गौर कृष्णदास महाराज के फोटो के सामने। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कई बार मना किया था भक्तिसिद्धांत महाराज को दीक्षा देने से, मना किया था। इसी प्रकार गोष्ठीपूर्ण ने रहस्यार्थ मंत्रों के देने के लिए मना किया था, और महापूर्ण जो उनके गुरु थे और कुरेश जो उनके शिष्य थे वो वेश बदल कर इनकी ओर से शैव राजा के सभा में गए थे, और एक को मृत्युदंड दिया गया और दूसरे की आंखें निकाली गईं। और उसी प्रकार शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने ब्रह्मचारी जब थे तो उन्होंने शिला भक्तिसिद्धांत महाराज का वेश पहनकर उनको बचाया एक सभा में जहां पर पत्थर फेंक रहे। तो बहुत सारे मिलती जुलती घटनाएं हैं आचार्यों के जीवन में। पता जाता है कि भक्तिसिद्धांत महाराज को भी एक बार विष पिलाया गया, जैसे श्रीपद रामानाचार्य को भी पिलाया गया। तो ये बात है।
एक चीज मुझे विशिष्ट अद्वैत को अगर थोड़ा समझा सकते हैं और एक्सप्लेन।
ओके, एक होता है विशेषणा और एक होता है विशेष्य। विशेषणा मतलब जैसे कि एक अच्छा करताल है, तो विशेषण क्या है? अच्छा। करताल क्या है? विशेष्य। इसी प्रकार श्रीमन नारायण जो है विशेष्य है। जो भी गुण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब उनके गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है भगवान। तो ये जो गुण है वो विशेषण है, और विशेष वस्तु स्वयं श्रीमन नारायण है। और जितने भी जीव हैं और भौतिक प्रकृति जितनी भी है वो भी क्या है? विशेषण है। और वैसे तो आत्मा जो है सनातन है, और आत्मा का विशेषण क्या है? शरीर। आत्मा और शरीर को इस प्रकार से अलग नहीं कर सकते हम, जैसे बोलते हैं ए ऑटो बोलते हैं, लेकिन वो ऑटो तो है नहीं ना, ड्राइवर है, ड्राइवर को बुला रहे हैं। इसी प्रकार हम हयग्रीव भक्त प्रभु करके मैं जिस व्यक्ति को देखता हूँ उस व्यक्ति के शरीर को देख रहा हूँ, लेकिन दोनों आत्मा ही हैं। तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों के बीच का एक साथ का संबंध है, ये अविभाज्य है, इसलिए वो अद्वैत है। और क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों है इसलिए वो सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैत है। वैसे तो जीव और ईश्वर एक है, किस प्रकार एक है? शरीर और आत्मा है, लेकिन जीव और ईश्वर एक भी नहीं है। यह है अंतर विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में। अद्वैत के अनुसार सब एक है, विशिष्टाद्वैत के अनुसार विशेषण और विशेष्य है, उन दोनों का एक समकालीन अस्तित्व है। इट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस, दे आर टुगेदर इन अ सिंथेसिस, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। तो सिंथेसिस टुगेदर एक साथ है, समझ में है? विशेषण और विशेष्य को अलग नहीं कर सकते, और क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों हैं इसलिए विशिष्ट है। जैसे कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोदम सूत्रे मणिगण इवा। सूत्र क्या है? कृष्ण है। मणि क्या है? जीव है या भौतिक प्रकृति है, जितना भी अभिव्यक्तिकरण सब कुछ दोनों अखंडनीय है, अलग नहीं कर सकते, दोनों का संबंध सनातन है, जीवभूत सनातन। तो इसलिए वो अद्वैत है, दे आर टुगेदर। लेकिन क्योंकि एक वस्तु दूसरे, वो सूत्र अपने आप में कुछ समझ में नहीं आता हमें, सूत्र की भी एक प्रकार से विशेषण, उसके गुण क्या है? ये जो मोतियां हैं। उसी प्रकार आत्मा को हम ठीक से देख नहीं सकते, शरीर की वजह से हम देख पा रहे हैं, शरीर जो है उसका विशेषण है। स्वयं श्रीमन नारायण जो है आत्मा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड और भौतिक जगत जो है उनके विशेषण है, उनका शरीर है। दिस इज विशिष्टाद्वैत। not Korealos, Siddhanta. Yes. Sorry. that requires not just one breakfast. I will need to come for a separate session and you have to feed me something else. For this class, you give me today's breakfast. We can have a... Maybe we should spend time on this because it is... I'm not saying that there should be a seminar. I'm saying that maybe it will require time. Because there is Dvaita Dvaita, which in one sense is very close to our Siddhanta, which is Nimbarka's Siddhanta. Shuddha Dvaita is Vishnu Swami's. Shuddha Dvaita is very, very complicated. And that is one reason it has got swallowed by Advaita. It is very, very dangerously close to Advaita. What Vishnu Swami, and Vishnu Swami is from Dwapar Yuga, practically. Adi Vishnu Swami. So, unhone kuch dekha hai, dekhne ke baad evolve kiya hai. But it was very, very close to Advaita, so it got swamped by the tides of time. Baad mein Pushti Mark thoda usse offshoot hua. But that is not directly this. All the Pushti Mark is talk about higher end Radha Krishna Tattva and all that. But fundamentally it is Sri Krishna Sharana Mama. They worship Bala Gopala. That is a Vrcha Vigraha. There are many things we should discuss. But basically we should understand that when Achintya Bheda Bheda, jiska jab Sri Chaitanya Mahaprabhu ne uska ek prakar se srijan kiya, halaki siddhant to hamesha hai, Bhagwan ke paas hi hai. वो सभी सिद्धांतों के निचोड़ को लेकर प्रस्तुत किया, क्योंकि बाकी सब ने असली सिद्धांत तो पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया था. पाक्षिक सत्य थे सब. जब कृष्णस्तु भगवान स्वयं के ऊपर आधारित जो सिद्धांत है वही परम तत्व है, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इधम तत्रादरो मत पर. सो महाप्रभु को ये सबसे थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने के बाद, जैसे हमने बताया मध्वाचार्य के संप्रदाय से थोड़ा, रामानुचार्य के संप्रदाय से, यू हैव टू प्रेजेंट ऑल दैट. तो एक्चुअल फिलॉसफी इफ यू टेक, दे आर ऑल कंप्लीट बट नॉट कंप्लीट. सो द कंप्लीट फिलॉसफी हैड टू कम व्हेन महाप्रभु हिमसेल्फ केम. देर आर मेनी, देर आर सटल डिफरेंस, लेकिन चारों में से एक समानता जरूर है. चित, अचित और ईश्वर जो है चारों संप्रदाय के तत्व हैं. अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है, उनके बीच के संबंध को. उसी में पृथकता पृथकत्व आता है दर्शनों के बीच. वेरी सटल बट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ स्टडी.
थैंक यू ब्रो, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. खासतौर पर आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर. आपने जिस तरीके से एट आउटसेट आपने एक कॉमेंट किया था, जस्ट वॉन्ट सम एलैबोरेशन, इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट. लाइक यू मेड अ कॉमेंट लाइक इन द during the appearances generally we speak more about the pastimes, when the disappearances we tend to speak more about the teachings. So like it's like what is it, it's like is it a tradition?
It's nothing. I'm glad you asked the question because this will help me glorify another acharya. Srila Jayapatak Maharaj ne bataya tha ek bar kisi acharya ke aavirbhav divas ke din mein, ye bataya tha ki kyunki acharya jo hain bataya jata hai ki he lives in sound after he departs, no? To kyunki jab acharya का तिरुभाव हो जाता है तब उनके शिक्षाओं को हमें मान लेना चाहिए, उनसे अभिन्न है, उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार से अभिन्न है. और जब लीलाएं बोलते हैं तो ज्यादातर उनसे रूप नाम इत्यादि से संबंधित है, तो इसलिए आविर्भाव के समय इसको कनेक्ट करते हैं और तिरुभाव के समय शिक्षाओं. हाँ, एंड ये मैंने जितामित्र प्रभु से सुना कि जयपताक महाराज ने ऐसे बताया था. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री पद रामानुजाचार्य की जय. निदाय निदाय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरे.